इप्सिता होटल से निकलकर सीधे कार में बैठ गई। संजय ने कार चलाना शुरू किया और थोड़ी देर में वे हवेली पहुंच गए। इप्सिता की कार हवेली के बाहर रुकती देख सुहासिनी जी बाहर देखने लगीं। इप्सिता अपने गाउन को संभालते हुए चुपचाप हवेली के अंदर आ गई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि सुहासिनी जी ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुकिए इप्सिता, कहाँ जा रही हैं आप, हमारे पास आइए। इप्सिता सुहासिनी जी के पास आकर बैठी और बोली, हाँ मम्मी, क्या हुआ। सुहासिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए, आपकी कुंवर साहब से मुलाकात कैसी रही, कुंवर साहब ने क्या कहा और क्या वे आपको पसंद आए, आप लोगों ने एक दूसरे से अच्छे से बातें की ना। इप्सिता ने मन ही मन कहा, वो पसंद आए भी हों या ना आए हों उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर कुछ कहने का क्या फ़ायदा। इप्सिता ये सोच ही रही थी कि सुहासिनी जी ने इप्सिता के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए हमें कैसी थी आपकी और कुंवर साहब की मुलाकात। इप्सिता बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, सब ठीक था मम्मी और हम थोड़ी थक गई हैं इसलिए अपने कमरे में जा रही हूँ। सुहासिनी जी ने इप्सिता का चेहरा अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमा और बोली, हमें आपसे यही उम्मीद थी, जाइए आराम से जाकर फ्रेश हो जाइए और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। इप्सिता ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी नाइट ड्रेस निकाली और उस भारी गाउन को बदलने के लिए बाथरूम चली गई। थोड़ी देर में इप्सिता कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर आराम से लेट गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, अब कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है। इप्सिता बिस्तर पर लेटकर अपना फ़ोन हाथ में लिया और देखा कि नंदिनी के कई सारे मैसेज थे। इप्सिता ने जल्दी से मोबाइल उठाकर सारे मैसेज चेक करने लगी। सारे मैसेज पढ़कर इप्सिता बोली, इन इतने सारे मैसेज का जवाब देने से अच्छा है नंदिनी को कॉल कर लूँ। इतना बोलकर उसने तुरंत नंदिनी का नंबर डायल किया। नंदिनी ने पहली ही रिंग में कॉल रिसीव करते हुए कहा, कहाँ थी तुम, मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रही थी, इतने सारे मैसेज किए मैंने लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया, कहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी तो नहीं करवा दी अर्जेंट में। नंदिनी इतना बोलकर हंसने लगी। उसकी मजाक में हंसने की आवाज़ सुनकर इप्सिता ने उसे डांटते हुए कहा, शट अप नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतनी जल्दबाजी में वे कुछ नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात, मैं इस तरह के मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पहले ही काफ़ी थक गई हूँ। नंदिनी हड़बड़ाते हुए बोली, क्यों, आज तुम्हें अपने पूरे महल की सफाई पर लगा दिया गया था क्या जो तुम इतनी थक गई। इप्सिता चिड़चिड़ाहट से बोली, तुम्हें मुझसे बात करनी है या इसी तरह की अपनी बकवास बातें करनी है, अगर तुम्हें सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना है तो रखो फ़ोन, नहीं बात करनी मुझे तुमसे। नंदिनी हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, कोई हंसी ठिठोली नहीं करूंगी, अच्छा बताओ क्या हुआ, क्यों थक गई मेरी बेस्टी। इप्सिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो आज मेरी मिस्टर अभिमन्यु से मुलाकात थी, माँ बाप ने मुझे उससे मिलने के लिए भेजा था। नंदिनी कन्फ्यूज़ होकर बोली, अभिमन्यु, अब ये कौन है। इप्सिता चिड़चिड़ाहट से बोली, जिससे माँ बाप ने हमारी शादी तय की है, कल ही तो बताया था, भूल गई क्या। नंदिनी कन्फ्यूज़ होकर बोली, हाँ वो तो बताया था तुमने लेकिन नाम नहीं बताया था, मतलब मेरे होने वाले जीजू का नाम अभिमन्यु है। इप्सिता ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ कुंवर अभिमन्यु राजवंशी। नंदिनी बहुत उत्साहित होकर बोली, मतलब तू आज अपने होने वाले पति से मिली थी, इतनी जल्दी मुलाकात भी हो गई, वाह यार, मुझे एक एक बात डिटेल में बताओ, कैसे दिखते हैं हमारे जीजू, तुमने उनके साथ क्या क्या बात की और पिक्चर्स तो क्लिक की होंगी ना। इप्सिता गुस्से से बोली, पिक्चर्स क्या खाक क्लिक करते, वो तो हमसे ठीक से बोले भी नहीं, बहुत घमंडी हैं। इप्सिता की बात सुनते ही नंदिनी बोली, वैसे तुमने तो मुझसे कहा था कि वो बहुत बड़े राजघराने से हैं, एक बार फिर से तुम मुझे उनका पूरा नाम बताओ, मैं सर्च करके देखूँ अपने जीजू को, वैसे नाम तो ये काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है, एक मिनट मैं अभी सर्च करके देखती हूँ, लेकिन अभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में सर्च कर लूँगी, अभी तो मुझे और बताओ, तुमने उनसे कुछ पूछा, उनकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, और तुमने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती हो। इप्सिता ने नामे सिर हिलाया, कुछ भी नहीं पता मुझे, मैंने ठीक से बात तक नहीं की, जैसे ही वो मेरे सामने आकर बैठे पहले तो कुछ बोले ही नहीं, फिर हमें इग्नोर करके अपने फ़ोन में लग गए, ऊपर से बातें ऐसी की सुनकर ही हमारा मूड खराब हो गया और हम भी गुस्से में कुछ उल्टी सीधी बातें बोलकर वापस आ गई। नंदिनी सिर पीटते हुए बोली, ओ मेरी झांसी की रानी, फर्स्ट मीटिंग थी, थोड़ा तो विनम्र होकर बात करती। इप्सिता झट से बोली, क्यों, सिर्फ हम ही क्यों विनम्र होते, जब उन्हें ही हमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो हम क्यों वहां बैठकर अपनी बेइज्जती करवाते, इसीलिए नहीं रुकी मैं वहां ज्यादा देर। नंदिनी ने इप्सिता को गुस्से में देखकर कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब तो मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रही हो, ठीक है चलो हम कुछ और बात करते हैं। इप्सिता बोली, और क्या बात करेंगे, मेरा तो मूड ही खराब है। नंदिनी उसे समझाते हुए बोली, अरे बाबा तुम्हारा मूड कैसे ठीक करूं मैं, वैसे एक बात बताओ, अगर तुम आज उनसे मिलने गई थी तो थोड़ा बहुत तो जान लेती, शादी होने वाली है तुम्हारी और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। शादी से पहले कुछ तो पता होना चाहिए ना, नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने मन ही मन कहा। वैसे एक तरह से देखा जाए तो नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे मिस्टर अभिमन्यु के बारे में कुछ ना कुछ तो पता करना ही होगा। ऐसे कैसे मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। इप्सिता ये सारी बातें मन में सोच ही रही थी कि नंदिनी ने कहा, हेलो ऐशी, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? इप्सिता ने हाँ में सिर हिलाया। सुन रही हूँ, हम तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। नंदिनी बोली, ठीक है, तब तक मैं भी थोड़ा अपने जीजू के बारे में गूगल सर्च करके देखती हूँ, तुम भी थोड़ा उनके बारे में पता करने की कोशिश करना। इप्सिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, देखती हूँ। जैसे ही इप्सिता ने नंदिनी का फोन रखा, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, इप्सिता ने कहा, हेलो संजय अंकल, मैं इप्सिता बात कर रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बेबी जी, बोलिए क्या बात है? इप्सिता ने कहा, मैं आज मिस्टर अभिमन्यु जी से मिलने गई थी। संजय ने कहा, हाँ बेबी जी। इप्सिता ने कहा, एक्चुअली मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। संजय कंफ्यूज होकर बोला, कैसी जानकारी बेबी जी? इप्सिता ने कहा, संजय अंकल, मम्मी ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो राजघराने से हैं और उनसे मेरी जल्दी शादी होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ बताया ही नहीं और मैं मम्मी से ये बात बोलने में थोड़ा घबरा रही थी। पता नहीं अगर मैंने मम्मी से ये बात बोली तो वे किस तरह से रिएक्ट करेंगे और फिर शायद मुझे अच्छा भी ना लगे। इसीलिए क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? प्लीज आप मम्मी को मत बताइएगा, आप मेरे लिए मिस्टर अभिमन्यु की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं? संजय थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन बेबी जी आप मुझे मालकिन से ये बात छुपाने के लिए क्यों कह रही हैं? हम उनसे बोलकर सब कुछ पता कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। इप्सिता ने कहा, नहीं संजय अंकल, अगर आप मम्मी से बात करेंगे तो फिर रहने दीजिए, मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए। संजय धीमी आवाज में बोला, ठीक है बेबी जी, आप नाराज मत होइए, हम सारी जानकारी आपको जल्द से जल्द इकट्ठा करके दे देंगे। इप्सिता खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच संजय अंकल, मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करेंगे और ये हम दोनों के बीच सीक्रेट होगा। संजय ने हाँ में सिर हिलाया, ठीक है बेबी जी, जैसा आप कहें।
संजय की बात सुनकर इप्सिता ने भी ओके बोलकर अपना फोन साइड में रख दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अभिमन्यु चल रहा था, ये सोचकर कि आखिर वो सच में ऐसा ही है क्या, पहला प्रभाव जमाने के लिए इस तरह का बर्ताव कर रहा था। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अभिमन्यु की पर्सनालिटी काफी रहस्यमयी लगी और इसीलिए वो काफी उत्सुक थी उसके बारे में जानने के लिए। और उसे नहीं पता था कि कल संजय उसे क्या जानकारी देने वाला है उसकी जिंदगी के बारे में। लेकिन जो भी हो, इप्सिता ऐसे ही बिना कुछ जाने उससे शादी नहीं करने वाली थी, इसलिए उसने संजय को इस काम पर लगाया। उसे पता था संजय के लिए ये काम उतना मुश्किल नहीं होगा। ये सब सोचते हुए इप्सिता अपने बिस्तर पर लेटी रही और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई क्रमशः।